मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज बुधवार है और बुधवार के दिन हम लोग परीक्षा की तैयारी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो मैं आज आप सबसे बात करूंगा परिच्छेद के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में। लेकिन पहले जरा ऑनलाइन जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनसे एक अनुरोध। मेरा अनुरोध ये है फ्रेंड्स, आप सब ऑनलाइन क्लासेस के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सब से कि देखिए, अब तो परीक्षा बिल्कुल आने के करीब ही है, आ ही गई है, आप समझ लीजिए प्रीलिम्स। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस बार परीक्षा में बैठ रहे होंगे तो आपने ये जो कम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है, जो लेक्चर्स हैं, उन्हें ध्यान से सुना होगा। आपको याद होगा कि बहुत डिटेल में इसकी चर्चा की गई है और बाकायदे अलग अलग शेड्स के जो कॉम्प्रिहेंशंस हुए, जो परिच्छेद हैं, उनके बारे में मैंने आप सबको विस्तार से बताया भी है कि आप इसे ऐसे पढ़िए, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर देखिए ये चुनौतियाँ हैं, यहाँ इस तरीके से आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश की गई है, इसके बाद फिर जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों के चरित्र के बारे में मैंने आपको समझाया है कि यह विकल्प क्यों गलत है, यह ही क्यों सही है, इन दो में क्यों भ्रम हो रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर सिद्धस्त कर सकूं और आपके भ्रमों को दूर कर सकूं ताकि दिमाग में एकदम स्पष्टता आ जाए। ये मेरी एक कोशिश रही है। मेरा अनुरोध अब ये है कि प्लीज़ आप मुझे कम्प्रिहेंशन के बारे में, मैं पूरे सी सेट के पेपर के बारे में नहीं कह रहा, मुझे सिर्फ कम्प्रिहेंशंस के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं कि पहले आपकी स्थिति क्या थी और ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनने के बाद अब आपकी स्थिति क्या है। और जब आप लिखें कि मेरी स्थिति यह है तो वो यथार्थ पर आधारित होने चाहिए, यानी कि इस बात पर आधारित होने चाहिए कि मैंने इतने कम्प्रिहेंशंस किए और अब मेरी यह स्थिति है, यानी कि उसमें सच्चाई होनी चाहिए। मुझे उसकी डिटेल्स नहीं चाहिए लेकिन आप जो बात लिखें उसमें सच्चाई की झलक मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब मुख्य विषय पर। और पिछली बार मैंने आपसे एक शब्द के बारे में बहुत विस्तार से बात की थी और वह था अनुगत, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं इन्फर। मुझे याद आ रहा है कि मैंने आप सबसे ये कहा भी था कि आप इससे संबंधित जो कम्प्रिहेंशंस हों, जो परिच्छेद आपको दिखाई दें, जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं पिछले वर्ष के पेपर में, उन्हें आप हल करने की कोशिश करें और देखें कि मेरे समझाने के बाद सही तरीके से आप उन्हें पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। आज मैं अब दूसरे शब्द पर आ रहा हूं और वह है एजम्पशन, पूर्व धारणा। देखिए, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ज्यादा दिक्कत होगी। हमारी धारणा होती है हर चीज के बारे में, तो धारणाएं दो आधार पर बनती हैं। पहली धारणा बनती है जब हमारे सामने कोई घटना घटित हो रही हो और हमने धारणा बना ली। मान लीजिए कि दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं और उन दोनों व्यक्तियों की लड़ाइयों को देखने के बाद मैंने ये धारणा बना ली कि इसमें ये व्यक्ति सही है और ये व्यक्ति गलत है। अब ये मेरी धारणा है, हो सकता है कि मेरी धारणा गलत हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी धारणा बन गई। किसी भी स्थान पर हम जाते हैं तो उस स्थान के बारे में हमारी ये धारणा बन जाती है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग खराब हैं, अरे यहाँ का तो मौसम बहुत अच्छा है, ये शहर तो बसने लायक है। इस तरह से लगातार हमारे दिमाग में धारणाएं बनती रहती हैं, ठीक है। मुश्किल ये बात यह है कि जब ये धारणा हमारे दिमाग में बन जाती है और लगातार जब उसी तरह की घटनाओं के हम संपर्क में आते चले जाते हैं तो वह धारणा मजबूत हो जाती है और मजबूत होकर के वो हमारे दिमाग में यूं कह लीजिए कि रच बस जाती है। अब आपको जब भी इस तरह की धारणाएं बनाने का मौका मिलेगा या यूं कह लीजिए कि इस तरह की जब घटनाएं घटित होंगी तो सच्चाई कुछ अलग है लेकिन धारणाएं आपकी वही बनेगी जो पहले से बनती चली आई है, क्योंकि उसने हमारे दिमाग को जकड़ लिया है। हमारी चेतना में आप यूं कह लीजिए कि अपनी मौजूदगी को इस तरह से दर्ज करा दिया है कि हम अपनी लॉजिक पावर खो बैठे हैं, हमारी तार्किक शक्ति जवाब दे चुकी है। जैसे ही वो घटना घटित हुई, अरे ये तो ऐसे ही होता है, अरे ये तो ऐसे ही होता है, बस इसे ही दोस्तों हम कहते हैं प पूर्व धारणा। जरूरी नहीं कि जो मैं घटना की बात कर रहा हूं कि केवल घटनाओं के आधार पर ही धारणा बने, सुनते सुनते धारणाएं बन जाती हैं, पढ़ने के बाद धारणाएं बन जाती हैं, किसी भी स्थिति में धारणा बन सकती है, बन जाती है। जो परिच्छेद के तहत प्रश्न पूछा जाता है वो एजम्पशन को लेकर के पूछा जाता है, पूर्व धारणा को लेकर के पूछा जाता है। सामान्यतया एक अंश दिया गया है और उस अंश के आधार पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि इससे क्या धारणा बन रही है, इसके बारे में आपकी पूर्व धारणा क्या है या इसको लेकर के किस तरह की पूर्व धारणा बनती है। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को तो मुझे लगता है कि शायद स्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों की इच्छा है कि कुछ प्रश्नों को हल किया जाए डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत। यदि आप लोग कहेंगे तो फिर ऐसा भी किया जा सकता है। अब आप देखिए कि पूर्व धारणाओं के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं। एक बात मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, तो जो गांव का व्यक्ति है उसके बारे में आपकी धारणा क्या है, बताइए। गांव के व्यक्ति के बारे में आपकी धारणा क्या है? गांव के व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, इनकी भाषा ऐसे ही होती है, ये तो ऐसा ही सोचते हैं, इनका ऐसा ही व्यवहार होता है, इनको कर्टसी नहीं आती है, इनको मैनर्स नहीं आते हैं, ये लोग आलसी, जो कुछ भी है इस तरह की पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो पूर्व धारणाएं बनी है वो पूरी तरह से गलत ही है, मैं गलत और सही की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि जो धारणाएं बनी हुई हैं वो बन चुकी हैं, भले ही वो उस समय गलत क्यों ना हो। अब जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि गांव का एक व्यक्ति आया है लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी धारणा बनी हुई है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही होते हैं। अब आप इसका क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई धोती कुर्ता पहना हुआ हो, कंधे पर गमछा टांग रखा हो, पैर में खड़ाऊ पहन रखी हो, माथे पर तिलक लगाया हुआ हो, तो आपकी धारणा क्या बनेगी? चलिए वो पंडित होगा, पुरोहित होगा, इसकी बात हम लोगों ने अनुगत के अंतर्गत की भी थी, ये धारणाएं आपकी बन गई तो अनुगत हो गया, चलिए ये। लेकिन आपकी पूर्व धारणा ये बन चुकी होगी कि अंग्रेजी नहीं जानता होगा, ये संस्कृत का विद्वान होगा, संस्कृत जानता होगा, या हिंदी जानता होगा, या अगर आप रीजनल लैंग्वेज में है तो वो जानता होगा, लेकिन इसको अंग्रेजी क्यों आती होगी? क्योंकि अंग्रेजी जो जानता है वो तो कोट पहनता है, पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, जूते पहनता है, अंग्रेजी पहनने जो अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति तो इस तरह से माथे पर टीका नहीं लगाएगा, कंधे पर गमछा नहीं टांगेगा, ये तो अंग्रेजी के विरुद्ध है। तो जो अंग्रेजी बोलता है उसके बारे में हमारी धारणा इस तरह की बन गई है, या यूं कह लीजिए कि जो इस तरह के वस्त्र पहनता है उसके बारे में हमारी पूर्व धारणा इस तरह की बन गई है। ये तो देखिए मैंने एक व्यक्ति के बारे में कहा, यहां ये बेसिकली जनरल सेंस में होता है, जो मैंने गांव के व्यक्ति के बारे में कहा है, एक जनरल तरीके से हम बात करते हैं। राजनेताओं के बारे में आपकी क्या धारणा है? सोचिए, एक धारणा बनी हुई है ना कि राजनेता ऐसे होते हैं, या यू कह लीजिए कि राजनीति ऐसी होती है, धारणा बनी हुई है और ये हमारे प्री एजम्पशंस हैं, पूर्व धारणा है, प्री एजम्पशंस नहीं कहना चाहिए, एजम्पशन ही अपने आप में प्री है, पूर्व धारणाएं हैं। तो जो परिच्छेद दिया जाता है उस परिच्छेद को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में भी इस तरह की उस परिच्छेद के बारे में एक धारणा बन जाती है, लेकिन उसे बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। मिस इसलिए कर जाएंगे कि देखिए जब आप एक परिच्छेद पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप इसका जो मनोवैज्ञानिक संकट है उसे समझने की कोशिश कीजिए। आप परिच्छेद को पढ़ रहे हैं, है ना, परिच्छेद में मान लीजिए कि किसी महिला के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ गए पूरा, तो महिला के बारे में आपकी अपनी पूर्व धारणा बनी हुई है। मजेदार बात यह है कि जब आप उस परिच्छेद को पढ़ेंगे तो पढ़ने के दौरान जो आपके दिमाग में पूर्व धारणा बनी हुई है वो बार बार इंटरफेयर करेगी। अच्छा ये तो होना ही था, अच्छा ऐसा तो होता है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये तो महिला है, या ये तो गांव का आदमी है, या ये तो राजनेता है, इस तरह की चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। इसीलिए याद रखिए कि सही तरीके से पढ़ना और उसे सही सही समझना बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत जबरदस्त किस्म का मनोविज्ञान है। और याद रखिए कि जो बोधगम्यता है वो केवल परीक्षा पास करने का ही एक तरीका नहीं है, बल्कि अच्छा सिविल सर्वेंट बनने का भी तरीका है। और जिसमें हम जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, आप इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग सही तरीके से तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप बोधगम्यता में माहिर नहीं होंगे, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं या जो सामने वाला बोल रहा है उसे सही तरीके से समझ ही नहीं रहे हैं, अपनी धारणाओं के शिकार हैं। तो जब आप परिच्छेद पढ़ेंगे तो आपकी अपनी जो धारणा है वो लगातार इंटरफेयर करते रहेंगे और आपको भटका देंगे। तो दोस्तों, इसीलिए जब इससे संबंधित आप कोई भी परिच्छेद पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। खैर, बाद में यदि संभव हुआ तो हम लोग जब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो चीजें और शायद क्लियर हो सके। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।